ओम शनिश्चराय नमः। शनि व्रत कथा एवं उसकी विधि। शनिवार के दिन शनि देव की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल और उड़द भगवान शनि देव को बहुत प्रिय हैं, इसलिए इनके द्वारा ही शनि की पूजा की जाती है। शनि की दशा को दूर करने के लिए शनिवार का व्रत और शनि स्त्रोत का पाठ अति लाभदायक होते हैं। अथ शनिवार व्रत कथा। एक समय की बात है कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निर्णय ना हो सका तो सब इंद्र के पास गए और कहने लगे, आप सब देवताओं में राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाइए कि हम नवों ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र उनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे, मुझ में ये सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा बता सकूं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय है। इस समय पृथ्वी पर न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य हैं, जो दूसरों के दुखों का निवारण अतिशीघ्र करते हैं। इसलिए आप सब मिलकर उन्हीं के पास जाइए, वही आपके दुखों का निवारण करेंगे। इंद्र के वचन सुनकर सभी ग्रह देवता भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में उपस्थित हो गए और उन्होंने राजा के सामने अपना प्रश्न रखा। उनका प्रश्न सुनकर राजा चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसे बड़ा और किसे छोटा बताऊं। जिसे छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा। उसने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा, नवों धातुओं के नौ आसन बनवाए। सभी आसनों को क्रम से, जैसे सोने का आसन सबसे पहले और लोहे का आसन सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सभी ग्रहों से कहा, आप अपने आसन पर विराजिए और जिसका आसन सबसे आगे है वो सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे है वो सबसे छोटा होगा। चूंकि लोहा सबसे पीछे था और वो शनि देव का आसन था, इसलिए शनि देव ने समझ लिया कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने राजा से कहा, राजा तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर एक महीना, चंद्रमा सवा दो महीना दो दिन, मंगल डेढ़ महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने रहते हैं, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूं। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। सुनो राजन, भगवान श्री राम पर 7.5 साथी आई तो उन्हें वनवास हो गया, और जब रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजन, अब तुम सावधान रहना। राजा ने कहा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके पश्चात अन्य ग्रह तो प्रसन्नता पूर्वक चले गए, लेकिन शनि देव ने बहुत क्रोध में वहां से प्रस्थान किया। कुछ समय व्यतीत होने पर जब राजा विक्रमादित्य पर 7.5 साथी की दशा आई तो शनि देव घोड़ों के सौदागर के रूप में अनेक सुंदर घोड़ों सहित राजा की राजधानी में आए। राजा ने जब सौदागर के आने की खबर सुनी तो उसने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल इतनी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित रह गया। उसने तुरंत राजा को खबर दी। राजा ने उन घोड़ों में से एक अच्छा सा घोड़ा चुना और सवारी के लिए घोड़े की पीठ पर चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा और बहुत दूर एक घने जंगल में राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। राजा अकेला जंगल में भटकता रहा। भूख और प्यास से व्याकुल भटकते हुए राजा ने बहुत देर पश्चात एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल जानकर उसे पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी। राजा ने अंगूठी निकालकर प्रसन्नता से ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। शहर में पहुंचकर राजा एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया। राजा ने स्वयं को उज्जैन का रहने वाला और अपना नाम विक्रम बताया। सेठ ने उसे एक कुलीन व्यक्ति समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को अपने लिए भाग्यवान व्यक्ति समझा और भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य से देखा कि खूंटी पर एक हार लटक रहा है और वो खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर सेठ को जब वो हार नहीं मिला तो सबने यही निर्णय किया कि विक्रम के अलावा और कोई तो इस कमरे में आया नहीं है, इसलिए विक्रम ने ही हार चुराया है। परंतु विक्रम ने मना किया कि उसने हार नहीं लिया है। इस पर 5-7 व्यक्ति उसे फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने विक्रम को राजा के समक्ष उपस्थित कर दिया और बताया, आदमी तो ये भला प्रतीत होता है, चोर नहीं मालूम पड़ता, लेकिन सेठ का कहना है कि इसके अलावा और कोई घर में आया ही नहीं। तब राजा ने आज्ञा दी, विक्रम के हाथ पांव काटकर इसे चौरंगिया कर दिया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और विक्रम के हाथ पांव काट दिए गए। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर एक तेली विक्रम को अपने घर ले गया और उसे कोल्हू पर बैठा दिया। कोल्हू पर बैठा विक्रम अपनी जुबान से ही बैल हांकता रहा। शनि की 7:30 ही समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु के समय एक रात को विक्रम मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई। उसने दासी को यह पता लगाने के लिए भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। सारे शहर में घूमते घूमते दासी ने देखा कि तेली के घर में चौरंगिया गाना गा रहा है। महल में जाकर दासी ने राजकुमारी को विक्रम के बारे में बता दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैं चौरंगिया से ही विवाह करूंगी। प्रातःकाल होने पर दासी ने उसे जगाना चाहा, लेकिन राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। रानी के पास जाकर दासी ने राजकुमारी के ना उठने की बात बता दी। रानी ने तुरंत आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा तो राजकुमारी ने कहा, माता जी, मैंने प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, तू क्या बात कर रही है, तेरा विवाह तो किसी देश के राजा के साथ होगा। राजकुमारी बोली, माता जी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। रानी ने चिंतित होकर ये बात राजा को बताई। राजा ने स्वयं वहां आकर राजकुमारी को समझाया, तुम्हें ऐसी बात कभी विचारनी नहीं चाहिए। मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान और बड़े से बड़े गुणी राजकुमारों को आमंत्रित करता हूं और उनमें से जो भी सबसे अधिक तुम्हारे लिए उपयुक्त होगा उसी से तुम्हारा विवाह होगा। इस पर राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु किसी दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जो तेरी इच्छा हो वैसा कर। राजा ने तत्काल तेली को बुलाया और तेली से कहा, तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं राजकुमारी का विवाह करना चाहता हूं। तेली ने कहा, ये कैसे हो सकता है महाराज, कहां आप हमारे राजा और कहां मैं एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा, भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंधनवार लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए हुए थे तो आधी रात के समय शनि देव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया और पूछा, बोलो राजा, मुझे छोटा बताकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगते हुए कहा, मेरी भूल को क्षमा करते देव, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और उन्होंने शनि देव की स्तुति की। शनि देव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को उसके हाथ पांव दे दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें, जैसा दुख आपने मुझे सौंपा था वैसा दुख किसी और को ना दें। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी ये प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा, उसे मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो प्रतिदिन मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने राजकुमारी को सब कुछ विस्तार से बता दिया और कहा, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह जानकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातः जब राजकुमारी की सखियों ने उससे पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृतांत सुना दिया। तब सबने प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने सुना तो वह विक्रमादित्य के पास आया और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। मैंने आप पर चोरी का झूठा दोष लगाया था, आप मुझे जो चाहे दंड दे सकते हैं। राजा ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसलिए मुझे सब दुख प्राप्त हुआ। अब तुम अपने घर जाकर अपना कार्य देखो। सेठ बोला, मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन स्वीकार करेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय सभी भोजन कर रहे थे, सभी ने एक अत्यंत आश्चर्यजनक बात देखी कि जो खूंटी पहले हार निगल गई थी, अब वो हार उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने सोने की बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और हाथ जोड़कर कहा, राजन, मेरी एक कन्या है श्री कंवरी, आप कृपया उसका पाणी ग्रहण करें। सेठ ने अपनी कन्या श्री कंवरी का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां रहने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा, अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। कुछ दिन पश्चात विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी सेठ की सुपुत्री श्री कंवरी तथा दोनों जगह से दहेज में मिले अनेक दास दासियों, रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की ओर चल दिए। जब वे शहर के निकट पहुंचे और पुरवासियों ने राजा के आगमन का समाचार सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा उनकी अगवानी के लिए आ पहुंची। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। पूरे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा विक्रमादित्य ने शहर में ये सूचना कराई कि शनि देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इन्हें छोटा बताया था, इसलिए मुझे ये दुख प्राप्त हुआ। तब से राजा के पूरे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगते रहे। जो कोई शनिदेव की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन शनिदेव की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।